सभी इतने भाग्यशाली आत्माएं हो जो विशेष मम्मा डे पर आप लोग भट्टी के लिए आए हो। हर एक दिन की अपनी विशेषता होती है, तो मम्मा डे पर पहुंचे हो तो ये आपका भाग्य बहुत विशेष भाग्य है। आप अनुभव करेंगे कि मम्मा का इष्टा प्यार, इष्टा स्नेह, इष्टा सकास आपको अवश्य अनुभव होगा। इसलिए इस समय आपके भट्टी में आने की बहुत 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 मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आप सभी का यही लक्ष्य है कि हम आत्माएं जल्दी संपूर्ण बन जाएं। इस लक्ष्य को हर एक आत्मा अपने पुरुषार्थ अनुसार कर रही है, तो जल्दी संपूर्ण बनने में अपने यज्ञ में एक एग्जाम्पल कोई है, सैंपल है, तो वो है मम्मा। बाबा को संपूर्ण होने में 32 साल लगा और मम्मा को संपूर्ण होने में कितना साल लगा? 27 साल लगा, 5 साल कम। तो इतने थोड़े समय में मम्मा ने क्या विशेष पुरुषार्थ किया, जिस पुरुषार्थ के कारण इतना जल्दी संपूर्णता को प्राप्त कर लिया। पुरुषार्थ हम आप सब भी कर रहे हैं। मुरली हमारे आपके सामने भी है, वही मुरली मम्मा के सामने भी थी, लेकिन क्या विशेष पुरुषार्थ किया? तो उसने मम्मा की 4 विशेष बातें थी। मम्मा तो वैसे सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन पुरुषार्थ में 4 बातें थी, जिस 4 बातों के कारण बहुत जल्दी संपूर्णता को प्राप्त किया। वो 4 बातें हैं। 1 थी मम्मा बाबा की आज्ञाकारी थी। 2 बात, मम्मा समर्पण बुद्धि थी। تیسری بات، بے حد کی بیراگی تھی، اور چوتھی بات اکھنڈ تپسوی تھی۔ یہ چار وشیشتائیں مما کو سمپورن جلدی بنا دیا۔ پہلی بات ہے کہ مما آجاکاری تھی۔ آجاکاری کا ارتھ ہی ہے کہ جو بابا نے ڈائریکشن دیا مرلی کے دوارا، اس کو ترنت کرنے لگ جانا۔ ہم آپ سب ترنت نہیں کرتے، اس لیے بھگوان کا آشیرواد نہیں ملتا ہے۔ ہم اپنے پرسارتھ سے سمپورن بننا چاہتے، بھگوان کا آشیرواد ہمارے پرسارتھ میں مددگار نہیں بنتا ہے، اس لیے ہمارے پرسارتھ میں رکاوٹ ہے۔ مما کو بابا کا آشیرواد تھا۔ آپ لوکک دنیا میں بھی دیکھو، کوئی کسی کو آشیرواد کب دیتا ہے؟ مان لو آپ کی طبیعت خراب تھی، آپ کسی کو کہتے ہو مجھے یہ ایک ٹیبلٹ گولی لا کر دے دو، اور وہ اسی سمے جا کر گولی لا کر آپ کو دے دیتا ہے، تو آپ کے دل سے دعا نکلے گی یا نہیں؟ نکلے گی نا۔ کیوں؟ کیونکہ اسی سمے لا کر دے دیا۔ اگر آپ نے کہا گولی لا کر دے دو اور وہ اس سمے نہیں، دو تین دن کے بعد تین چار گولی بھی لا کے دے دیتا، تو کیا آپ اسے آشیرواد دیتے؟ نہیں نا۔ گولی زیادہ لا کر دیا ہے لیکن آشیرواد کیوں نہیں نکلے گا؟ کیونکہ جب آوشکتا تھی تب اس نے دیا نہیں۔ تو بابا جو مرلی میں شریمت دیتا ہے، شیو بابا نے برہما مکھ سے جو مہا واکی اچارن کیے، مما ترنت اس کو کرنے کے پرسارتھ میں لگ جاتی تھی۔ ہو نہیں جاتا تھا لیکن کرنے لگ جاتی تھی۔ اس کا ریزلٹ باپ کا آشیرواد ملتا تھا۔ ہم آپ بھی کرتے ہیں لیکن مرلی سنتے آج ہیں، کریں گے دو چار دن کے بعد۔ یہی نہیں یاد رہتا ہے کہ آج بابا نے مرلی میں کیا کہا ہے، اس لیے باپ کا آشیرواد نہیں ملتا ہے۔ باپ کا آشیرواد بہت بڑا کام کرتا ہے۔ اب پرشن ہے کہ باپ کی اوگیا ہم کیوں کرتے ہیں؟ कहते भगवान मुरली सुना रहा है, फिर हम क्यों नहीं कहना मान पाते? क्या कारण समझते? क्यों नहीं कहना मानते? इसका एक ही कारण है, वो है भगवान को जो है जैसा है वैसा अभी तक ना समझ पाए हैं और या तो ना अनुभव कर पाए। नहीं तो अगर ये समझ में आ जाए कि भगवान कह रहा है तो कौन सी ऐसी आत्मा होगी जो भगवान का कहना न माने? आज अगर आपको कोई दादी जानकी दादी कुछ कह दे तो आप खुशी खुशी से करके दिखाओगे, दादी ने मुझे कहा है, दादी ने मुझे कहा है। और भगवान कहता है तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों? जो है जैसा है उसको पहचाना नहीं। मम्मा ने पहचाना था, जिसका एक छोटा सा एग्जाम्पल। पहले बाबा बच्चों को बहलाने के लिए बैडमिंटन खेलता था, तो जो दादियां हैं उस समय तो छोटी छोटी बहनें थी, तो बाबा के साथ खेलती थी, तो कभी भी बाबा बैडमिंटन में हारता नहीं था, हमेशा जीतता ही था। एक बार प्रकाशमणि दादी जीत गई तो इतना खुशी में, इतना उमंग में मम्मा से आकर बोला, मम्मा मम्मा आज मैंने बाबा को हरा दिया, आज मैंने बाबा को हरा दिया। बहुत खुशी में बोल रही थी तो मम्मा ने ऐसे इशारा करके बोला, चुप रहो नहीं बोलो। अब वो दीदी को मैंने दादी के कुछ समझ में नहीं, मम्मा क्या कह रही, बहुत खुशी में थी, बोला नहीं मम्मा सचमुच मैंने बाबा को हरा दिया। तो फिर मम्मा सीरियस हो गई और बोला, ऐसे नहीं बोला जाता है, ऐसे बोलो कि आज बाबा ने मुझे जिता दिया। भला सोचो कौन भगवान को हरा पाएगा? तो हम बाबा जो है जैसा है वैसा पहचान नहीं पाते। थोड़े समय के लिए बाबा को साधारण समझ लेते। अगर आप मुरली की एक पॉइंट रोज ले लो, एक पॉइंट धारणा के लिए कि मुझ आत्मा को आज बाबा की ये पॉइंट धारण करनी है, एक पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर आप सारा दिन अटेंशन दो 8-10 घंटा, तो क्या वो पॉइंट आपके स्वरूप में आ जाएगी या नहीं? आ जाएगी ना। तो अगर एक पॉइंट एक दिन में स्वरूप में आई तो 30 दिन में 30 पॉइंट हो जाएगी। बोलो संपूर्ण बनने में देरी लगेगी, लेकिन हम यही करते नहीं। इसलिए हम आत्माएं संपूर्णता से बहुत दूर है। अगर ये करना शुरू कर दें तो आपका पुरुषार्थ हाई जंप तो क्या, आप आत्मा उड़ने लगेंगी। बस बाबा के साथ साथ ये कल से करो, और जब तक यहां हो आप देख लेना कि आत्मा कितनी ज्यादा प्रोग्रेस पर आ गई है। मम्मा आज्ञाकारी थी, इसका एग्जाम्पल है इस स्थूल कर्म क्षेत्र पर। एक बार साकार बाबा के समय एक पार्टी आई हुई थी मिलने के लिए, और मिल करके जब वो वापस जा रही थी तो जो पांडव भवन में हिस्ट्री हाल है उसी में बाबा पार्टी से मिल रहा था। 10-15 लोग थे, बहुत बड़ी पार्टी मानी जाती थी, और बाबा उनको विदाई दे रहा था। मम्मा भी बैठी थी, तो विदाई के समय बाबा ने मम्मा को बोला कि मम्मा, आज बाबा का दिल है कि बच्चों को साबूदाने का हलवा खिलाएं। तो मम्मा ने कहा जी बाबा, तुरंत उठ करके गई।
प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान कीजिए।
ओ शांति। तो मम्मा तुरंत किचन में जा कर के जो भंडारिन थी उसको बोला कि बाबा ने कहा है साबूदाने का हलवा बनाकर दे दो। तो जो बहन थी बोला मम्मा, पार्टी जा रही है, साबूदाना का हलवा बनने में काफी टाइम लगेगा, मम्मा कैसे बन पाएगा, पार्टी जाने को तैयार है। तो मम्मा ने कहा कि बाबा ने कहा है बनाओ, ऐसे मम्मा कहकर चली आई। लेकिन जो बनाने वाली थी उसको संकल्प चलने लगा कि इतना जल्दी तो हलवा बनने वाला है नहीं, क्योंकि साबूदाने का हलवा बनाने में बहुत झंझट है। पहले उसको गीले कपड़े से पोंछना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर तलना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको पानी में डालकर उबाल चास डालना पड़ता, तो गलते गलते घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है। तो उस बहन ने मम्मा के पास संदेश भेजा कि मम्मा इतना जल्दी बन नहीं पाएगी, बाबा को बता दो। तो मम्मा ने आकर के उस बहन को बोला कि क्या बाबा को पता नहीं है बनने में टाइम लगता है, जब पता है तो फिर बाबा ने कहा है तो बनाओ, फिर तो तेरी बनाने लगी और पार्टी को विदाई दे दी, पार्टी चली गई। और जब हलवा बना और बाबा को लाकर दिया, पार्टी नीचे आ चुकी थी। तो बाबा ने एक भाई जोगेंद्र भाई नाम था उसको दिया कि जाओ बच्चों को गरम गरम हलवा खिला कर आओ। ठंडी के दिन थे, पहले बाबा ठंडी में आता था। अब वो बेचारा स्टेशन पर पहुंचा गरम गरम हलवा लेकर के, ट्रेन छूटने वाली थी। तो जब जा करके दिया तो जैसे उन बच्चों को दिया कि बाबा ने आपके लिए हलवा बनाकर भेजा है साबूदाने का हलवा, तो जो भी बच्चे थे सबके आंख से प्रेम के आंसू गिरने लगे। इतना प्यार तो लौकिक माँ बाप भी नहीं करेगा। सब माताएं बैठी हैं, ज्यादा कुछ होता तो बच्चे को पैसा दे देती, जाओ बाजार से खरीद के खा लेना। और उस प्यार का रिजल्ट कि वो बच्चे झाटकू हो गए और यज्ञ के पिलर बन गए। तो देखो बाप की आज्ञा की पालना में कितनी बड़ी सेवा है और बाप का आशीर्वाद है। तो बाप का आशीर्वाद क्या काम करता है? वो काम ये है कि जैसे आप पुरुषार्थ करने लगते हो तो आपके सामने पुराने संस्कार, पुराने शरीर के हिसाब किताब, संबंधी के तन मन धन जन सब प्रकार के हिसाब किताब आना शुरू हो जाते हैं। फिर उसमें आत्मा जो चाहती है वो कर नहीं पाती, क्योंकि हिसाब किताब बंधन डाल देते। किसी का तन ऐसा हो जाता जो बैठकर योग ही नहीं कर सकते, बीमार हो जाते हैं, कुछ कड़ी बीमारी आ जाती है, कई कारण हैं। किसी के पास धन की कमी, किसी के परिवार में कला कलेश, कुछ न कुछ कारण होता है। तो मम्मा के सामने भी ये सब विघ्न था और हमसे हजार गुना ज्यादा था। बीमारी मम्मा के पास कैंसर की बीमारी थी, इतना दर्द होता था, लेकिन बाप का आशीर्वाद क्या काम करता है कि जैसे मम्मा ने पुरुषार्थ बढ़ाया तो मम्मा के सामने सभी प्रकार का विघ्न आना शुरू हुआ, तन का मन का धन का जन का सब। लेकिन बाप का आशीर्वाद सारे हिसाब किताब को दबा देता है, हिसाब किताब को दबा देता है। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए आत्मा जो चाहे सो कर सकती है, हिसाब किताब सामने टकराता नहीं है। जैसे मम्मा को कैंसर था लेकिन दर्द 1% भी नहीं होता था। जैसे बीमारी है या नहीं है बराबर ही था, क्यों? बाप का आशीर्वाद दबा रखा था। पुराने संस्कारों का बाप का आशीर्वाद दबा देता था, इसलिए मम्मा ने जैसा चाहा वैसा पुरुषार्थ कर लिया। तो पहली बात आज्ञाकारी थी जिससे बाप का आशीर्वाद था। दूसरी बात, मम्मा समर्पण भाव वाली थी, अपना गीत है, प्रभु प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। तो मम्मा संपूर्ण समर्पण थी। संपूर्ण समर्पण का अर्थ है कि जो बाबा श्रीमद् देता है बिना सोचे समझे, जो बाबा ने कहा कल्याण समझकर तुरंत जी बाबा स्वीकार कर लेना, जिसको कहते हैं आंखें बंद करके मान लेना। तो मम्मा में 100% ये गुण था कि मम्मा एकदम समर्पण बुद्धि थी। जो बाबा ने कहा, जैसे कहा, जिस तरह से कहा, कुछ भी नहीं, पर जो बाबा ने कहा वही राइट है, वही कल्याणकारी है। जिसका एक एग्जाम्पल बताता हूं कि एक बार पांडव भवन में ही, जो पांडव भवन है उस समय खरीदा गया था, तो वो पांडव भवन पहले जो मकान था वो राजा का घोड़ा बांधने का मकान था, उसमें घोड़े रहते थे, तो वो बहुत पुराना था। वो तो जब लिया तो थोड़ी सफाई वफाई करा के ठीक किया, लेकिन बना हुआ मॉडल सब पुराना ही था, अब भी कुछ पुराना मॉडल है। तो जहां पुराना घर होता है उसमें कौन रहता है? चिड़िया अपना घर बना लेती, घोंसला बना लेती। तो चिड़ियाओं ने अपना घर बनाया हुआ था, तो एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसका नाम जानते होंगे गौरैया कहते, इतनी छोटी सी चिड़िया होती है, अक्सर करके घरों के अंदर ही अपना घर बनाती है। तो उसमें 2-3 अंडे उसके थे, तो वो अंडे नीचे गिर गए थे, तो लच्छू बहन आ रही थी। लच्छू बहन मतलब जो बाबा को खाना खिलाती थी, बाबा और मम्मा को। तो उसने रस्ते में अंडे गिरे हुए देखे, सुबह के समय 3 अंडे थे, तो उठा करके बाबा के पास ले आई और बोला बाबा ये आज अंडे गिरे हुए थे। बाबा ने कहा ठीक है बच्ची दे दो। तो रोज सुबह के समय सभी जो भी भाई बहने वहां थे, सब क्लास में जाने के पहले बाबा से गुड मॉर्निंग करने आते थे, साकार बाबा से, और गुड मॉर्निंग करके क्लास में जाते थे। तो बाबा को परीक्षा भी लेनी थी और हर बात में शिक्षा भी देनी थी। तो जो भी आता था बाबा के गुड मॉर्निंग करने बाबा के सामने, तो बाबा कहता था, पहले उसकी महिमा करता था, इतनी मेहनत करते हो बाबा देखता है तुमको कुछ ताकत की जरूरत है, बच्ची आपके लिए देखो बाबा ने अंडे मंगवाए, लो बच्ची मुंह खोलो बाबा आपके मुंह में डालता है। अब सब समझे बाबा मजाक कर रहा है, क्योंकि बाबा कैसे अंडा खिलाएगा, जहां लहसुन प्याज खाना मना है तो अंडा कैसे खिलाएगा। तो सब हंस हंस के चले जाते थे, किसी ने भी अंडा खाया नहीं, मतलब स्वीकार नहीं किया। तो अंत में बाबा ने मम्मा को बोला, लच्छू को बोला कि मम्मा को बुलाओ। तो मम्मा को बुलाया तो बाबा ने मम्मा की महिमा की, मम्मा देखता हूं बहुत मेहनत पड़ती है, ये तो रथ बुढ़ा हो गया है, सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही आ गई है, देख रहा है बाबा तुम्हें बहुत मेहनत पड़ रही है, तो मम्मा ऐसा करो, बाबा ने आपके लिए ताकत की चीज मंगाई है, बच्ची बैठो, ये देखो बाबा ने तुम्हारे लिए अंडे मंगाए, बैठो बच्ची मुंह खोलो। तुरंत मम्मा बैठ गई, ऐसे मुंह खोल दिया, जरा सा भी नहीं सोचा। इसको कहते हैं समर्पण भाव, जो कहा जैसे कहा जो कुछ भी कहा, हम तो तुरंत सोचने लगते हैं ये राइट है ये रॉन्ग है, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, हम थोड़ा सोचने लगते हैं, लेकिन नहीं, जो कहा राइट, भगवान कह रहा है, वो त्रिकालदर्शी है, सबके तीनों कालों को जानता है, जिसमें आपका कल्याण होगा वही काम बाबा करेगा। और ये भी बता देते हैं कि अगर आप बाबा के ऊपर अपने को अर्पित कर रखा है, समर्पित भाव से हो, तो आपका कोई भी काम बाबा बिगड़ने नहीं देगा, ये गारंटी है। पहली बात। दूसरी बात, कई सोचते हैं कि हमारा ये काम हो जाए, लेकिन होता नहीं है वो काम, लेकिन आप समर्पित भाव से हो तो जिस बात में आपका कल्याण होगा वही काम बाबा होने देगा, वरना होने ही नहीं देगा। ये बहुत बड़ी बात है। सिर्फ बाबा पर अपने को अर्पित रखो। क्यों? हम एक कालदर्शी हैं, बाबा तीन कालदर्शी है। एक बहन है इस तरफ, उसको सेंटर की जरूरत थी, किराए के मकान पर, उसने अव्यक्त बाबा जब आते हैं उससे मिली, उसको भी बोला, बाबा ने कहा बच्ची मकान मिल जाएगा, वो संदेश लगवाया उसमें भी बाबा को बोला मकान के लिए, बाबा ने कहा मिल जाएगा। ये 5-6 साल हो गया, अभी तक मकान नहीं मिला। तो उस बहन ने कहा जब बाबा ने कहा तो क्यों नहीं मिल रहा है, तो हम बैठे थे, हम कहा इसमें जरूर बाबा को आपको इस स्थान से सेवा करानी है, या जो स्थान जहां आप लेने वाले थे वहां इतनी सेवा होने वाली नहीं थी। तो बताते हैं रिजल्ट। तो अभी जब नोटबंदी का समय आया तो एक भाई उस समय एक बड़ी थैली में फूल माला ऊपर रखा हुआ कुछ बाबा के गुप्त सेवा करके चला गया। अब अगर मकान मिल गया होता तो काहे को कोई करता। तो उस बहन से कहा, हम कहा आपके पास बैंक बैलेंस हो गया नहीं, पहला फायदा। दूसरा फायदा कि अभी वहां इतने अच्छे अच्छे 6 BIP की 30-40 BIP की सेवा हुई है जो अभी यहाँ आए थे शिविर में, कि जैसे बने बनाए देवता तुम कहा बोलो, इसके लिए बाबा भी मकान दूसरा नहीं दे रहा। तो अगर आप समर्पित भाव में हैं तो ये पक्का समझ लो कि जिसमें आपका कल्याण होगा वही काम बाबा होने देगा, वरना कई कारण बन जाएगा होगा नहीं। तीसरी बात, मम्मा बेहद की बैरागी थी, बेहद की बैरागी अर्थात एक बार मम्मा बॉम्बे में थी और रमेश भाई और निर्बेर भाई जो अपने हैं, तो रमेश भाई कार चला रहा था, मम्मा बैठी थी, निर्बेर भाई भी बैठे थे, कहीं सेवा के लिए जा रहे थे। तो रास्ते में एक बोर्डिंग था, बोर्डिंग में एक ऐसा किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट था कि जैसे वो ब्रहेट होता है जिसमें पानी का नार जैसे चलती रहती, भरती रहती, खाली होती रहती है, ऐसे कुछ बना हुआ था। तो उसमें निर्वेर भाई को देखकर संकल्प आया कि ऐसे कुछ ज्ञान में ऐसा अपना बनाएं एडवर्टाइजमेंट कि आत्मा 84 जन्म लेते लेते कैसे खाली हो जाती है, संगम पर आकर बाबा फिर कैसे भरता है, ऐसे उनका संकल्प चल रहा था। तो उन्होंने मम्मा को कहा, मम्मा आपने ये फोटो देखा? तो मम्मा चुप रही। फिर दूसरी बार बोला कि मम्मा आपने वो फोटो देखा? तो मम्मा ने पूछा कौन सा फोटो? बोला मम्मा वही जो एडवर्टाइजमेंट के लिए था, तो उसमें मम्मा कुछ आप ऐसा बताओ और एडिशन करो जो हम सेवा के काम में ला सके। तो पता मम्मा ने क्या जवाब दिया? मम्मा ने कहा, मैं इस साकार दुनिया में उसी समय देखती हूं जब बाबा के बच्चे सामने बैठे होते हैं, तब बाबा के बच्चों को देखती हूं, बाकी मैं बाबा को देखती। सोचो एक कितनी बड़ी बात, यहां हम सब स्पेशल साइड सीन देखने जाते और मम्मा इतनी बैरागी थी जो बात न पूछे। सिर्फ उसी समय आंख उठा के देखती है जब क्लास होता है, बाबा के बच्चे होते, बाकी इस दुनिया को देखते हुए देखती ही नहीं, इतनी बैरागी थी। और चौथी बात, अखंड तपस्वी थी। तपस्या तो मम्मा की इतनी ज्यादा थी कि ब्रह्मा बाबा मम्मा बाबा मम्मा के लिए कहता था कि ये तो शिव की पिंडी है, बिल्कुल शिव में चिपकी रहती है, एक सेकंड जैसे शिव से अलग होती ही नहीं। बाबा मम्मा के लिए ऐसी सर्टिफिकेट देता था, मम्मा 2 बजे रात को उठकर छत के ऊपर बैठ जाती थी, चंद्रमा को देखती रहती थी, कंट्रास्ट करती थी कि अभी मुझे संपूर्णता में कितनी दूर है। जैसे चंद्रमा संपूर्ण है, मुझे संपूर्ण बनने में कितनी देरी है। उस समय 2 बजे उठ करके योग करती थी। तो जो बेहद का बैरागी होगा वो अखंड योगी अवश्य होगा, या अखंड योगी जो होगा वो बेहद का बैरागी अवश्य होगा। तो इन 4 पुरुषार्थ की बातों को लेकर मम्मा बहुत जल्दी संपूर्ण बनी, क्योंकि जिस आत्मा ने यह 4 बातें पुरुषार्थ में हैं उसमें सर्व गुण सर्व विशेषताएं स्वतः आ जाएंगी इन बातों के आधार से, और वो आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तो हम आप सब भी मम्मा के इस दिवस पर अंदर से संकल्प लें कि मम्मा हम भी आप जैसे पुरुषार्थ करके जरूर संपूर्ण और संपन्न बनेंगे ही। अच्छा, ओम शांति। Mm-hmm.